देखिए, पता नहीं, कोई भी अगर हम लोग प्रोडक्ट या कोई भी एक बहुत बड़ा लीथल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और उसमें एक विदेशी मदद है, और विदेशी मदद इस हद तक है कि उसके सारे डिजाइन डेवलपमेंट और उसके जो विकास सारी बातें हैं, अगर वो हमारे हाथ में नहीं थी, वो एक फ्रांस की एक कंपनी के पास थी, तो हम लोग पहले से ही एक थोड़ा सा वल्नरेबल तो थे ही कि ये कोई भी प्रोडक्ट जो भारत जो इस तरह का होता है वो अगर स्वदेशी ही हो तो ज्यादा अच्छा होता है, और उसके एक एक दूसरे देश के हाथ में उसके सारे डिजाइन थे, पहले से ही थे। लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये जो इसकी जो हम वो जो डाटा होंगे वो वहां से निकलकर दूसरे देशों के पास, दूसरे लोगों के पास इस तरह से बांट लिए जाएंगे, जैसे कि वो एक तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी थी, वो सारे दस्तावेज को आउट कर दिए, कहाँ कहाँ पहुंचे होंगे, किस किस के हाथ में लगे होंगे। भारत ने इस पर हजारों करोड़ रुपया खर्च किया, तो 3.5 बिलियन तो अभी तक का आपका एस्टिमेट है। लेकिन अगर दुश्मन के पास ये पता हो कि उसका पूरा डॉजियर, इस पूरी सबमरीन का डॉजियर पता हो, इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है, इसके सिग्नेचर्स क्या हैं, इसके साउंड क्या निकलते हैं, इसके सोनार्स जब एक्टिव होते हैं तब वो कैसे बिहेव करते हैं, जब पैसिव होते हैं तब कैसे बिहेव करते हैं, तो एक तरह से सारा डॉजियर उसके पैदा होने से लेकर उसके बड़े होने तक, उसकी सारी वेन्स, उसकी अंदर तक की बातें सब हमारे दुश्मन को पता हो, तो उस पूरी सबमरीन का अर्थ क्या रह गया।
अब आगे चलते हुए आप क्या देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या कर सकेगी भारत की सरकार या क्या होगा?
देखिए, सौभाग्य की बात यह है कि ये दस्तावेज ऐसे समय सामने आए हैं कि भारत की इन 6 में से पहली सबमरीन ही अभी पानी में घुस गई है। INS कलवारी नाम से अभी उसने परीक्षण शुरू किए हैं और 1-1.5 साल चलने के बाद उसका इंडक्शन होना था, लेकिन बाकी 5 सबमरीन के ब्लूप्रिंट आपके पास अभी भी हाथ में है। मैं खुद MDL जहाँ पर ये सबमरीन बन रही है वहां पर गया हुआ हूँ, और हम जैसे जर्नलिस्ट तक के लिए उसकी उसके पास जाना, उसको देख पाना बहुत मुश्किल था। और बाकी जो 5 सबमरीन आपके पास बची हुई है उसके डिजाइन को ट्वीक करना अब आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है। ये बिल्कुल सही बात है कि उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, उसका हल, उसकी डिजाइन, उसकी वेट, उसका वक्त, उसका जो भी पैरामीटर्स है, उसको अचानक आप पूरे रातों रात इतने बड़े हजारों करोड़ के प्रोग्राम को नहीं चेंज कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप वास्तव में बदल पाएंगे, जैसे उनके जितने भी अंडर वाटर सिग्नेचर्स होंगे या सोनार्स के बिहेवियर होंगे या और जिसका आपको जो दस्तावेज आप देख सकते हैं कि ये हमारे लिए कम्प्रोमाइज सिक्योरिटी कर सकते हैं, और अगर बहुत छोटा छोटा ट्विकिंग भी टेक्नोलॉजी में कर दिया जाए तो उसके सारे बिहेवियर चेंज हो सकते हैं। इसलिए ये कह देना कि ये प्रोग्राम बिल्कुल ही रद्द हो गया है, ये तो मैं ये इस देश के लिए भी खतरनाक मानता हूँ। हजारों करोड़ रुपए और इतना मेहनत के बाद यदि आप पूरा सब कुछ पानी में चला जाएगा तो वो वास्तव में अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस देश के वैज्ञानिकों, इस देश के इंजीनियरों को और DCNS पर चुकी जिम्मेदारी है कि उन लोगों की तरफ से ये कम्प्रोमाइज हुआ है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनानी चाहिए। ये सारी चीजें जो कम्प्रोमाइज इस देश की सुरक्षा को कर सकती थी, इस समृद्धि को कर सकती थी, आप उसको बदलना होगा।
वहीं हमने IBN7 के फॉरेन अफेयर्स एडिटर प्रणय उपाध्याय से ये प्रश्न पूछा कि भारत जैसा देश जो कि भारी मात्रा में हथियार आयात करता है, उसके मद्देनजर इस लीक का क्या असर पड़ेगा?
भारत जैसा देश जो करीब अपना 60% वेपन इंपोर्ट करता हो विदेशों से, उसकी जो मॉडर्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट है वो बहुत बड़ी है, बहुत सारे हजारों करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इस समय नेगोशिएशंस में हैं, उन पर चर्चा चल रही है, तो ऐसे में जबकि भारत की निर्भरता इन विदेशी हथियार निर्माताओं पर हो, उसमें कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि वो भारत से जुड़ी जो सामरिक जानकारियां हैं वो सुरक्षित रहें। जहां तक इस मामले का सवाल है, फिलहाल अब ये सवाल जब हम लोगों ने भी पूछे तो जो जवाब हम लोगों को यहाँ मिलते हैं वो बताते हैं कि फिलहाल ये इस DCNS के कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या जो सीक्रेसी पैक्ट था या सीक्रेसी एश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था वो वायलेट हुआ है नहीं हुआ है, फिलहाल तो ये भी तय नहीं है। आमतौर पर ये सुरक्षा जो होती है इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स की, वो कंपनीज के बीच में भी एक कंपनीज भी इस चीज को मेंटेन करती हैं, क्योंकि ये जो उनका यूजर है उसके ट्रस्ट का सवाल है, ये उनका जो खरीदार है उसका उसके भरोसे का सवाल है, और अगर उसका भरोसा टूटता है तो वो केवल एक व्यक्ति का, एक कंट्री का नहीं, एक यूजर का नहीं, ये उनके पूरे बाजार में उनकी साख का सबब है। और इसीलिए लेकिन ये बात जरूर है कि ऐसे में जबकि बड़े हथियार निर्माता पर भारत की निर्भरता है, विदेशी हथियार निर्माताओं पर है, तो ये चिंता लाजमी है और ये लेसन लर्नड भी है भारत के लिए कि अगर इस तरीके से चीजें सामने आती हैं, और ये तो एक नमूना है, इससे पहले क्या ऐसा हुआ, क्या ये कहीं से लीक हो रहा है, भविष्य में नहीं हो, इस बात की गारंटी कैसे सुनिश्चित की जाए, ये स्वाभाविक रूप से वो सारी चीजें होंगी जो अब रेमेडियल मेजर के तौर पर भारत सरकार करना चाहेगी।
इसके चलते भारत और फ्रांस के बीच में जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो संबंध है, हालांकि ये एक निजी अखबार है तो उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप उस तरह से नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सामरिक स्तर पर देशों के बीच में भी इसका असर पड़ सकता है?
देखिए, जहां तक आप देखें कि ये भारत भी इसे केवल एक कंपनी का मामला नहीं मान रहा है, भारत ने भी जब भारतीय रक्षा मंत्रालय का अगर आप बयान देखें, दो दिन पहले जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि भारत ने जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ममेंट है फ्रेंच गवर्नमेंट का, उसको कॉन्टैक्ट किया है और उससे कहा है कि वो इस बात का पता लगाए कि आखिर ये दस्तावेज कहाँ से कैसे लीक हुए हैं, क्योंकि लीक हुआ है ये तय है, और अगर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं ये उसी जगह से लीक हो सकता है जहां ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। तो सबसे बेहतर होगा कि फ्रांस गवर्नमेंट ही इस चीज का पता लगाए कि क्योंकि एक फ्रेंच कंपनी है, उसके स्टोर से अगर एक डेटा लीक हुआ है, जैसे कि दावे किए जा रहे हैं कि एक एक्स फ्रेंच नेवल ऑफिसर था, उसके पास ये डेटा था, उसने कॉपी किया, और तमाम तरह की जो चीजें फिलहाल चर्चाओं में है, तो स्वाभाविक रूप से भारत की अपेक्षा फ्रांस सरकार से है कि वो इस मामले की पड़ताल करके इस पे रिपोर्ट दे, भारत को बताए कि आखिर ये डेटा कहाँ से लीक हुआ। जहां तक भारत के अपने स्तर का सवाल है, यहाँ इस बात का असेसमेंट चल रहा है कि आखिर जो लीकेज हुआ है वो कितना डिट्रिमेंटल होगा जो स्कॉर्पियन सबमरीन फ्लीट है उसके लिए, क्या करेक्टिव मेजर्स किए जाने चाहिए नहीं किए जाने चाहिए, तो क्या एक्सटेंट है, उसका असेसमेंट फिलहाल चल रहा है। लेकिन फ्रांस के साथ ये मामला ऑलरेडी उठाया जा चुका है डिप्लोमेटिक चैनल से। जहां तक ऑस्ट्रेलिया का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने भी फिलहाल ऐसे कोई बहुत गैर जिम्मेदाराना बर्ताव नहीं किया है कि उन्होंने इस चीज को काफी रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट किया है। लेकिन जहां तक सवाल है, ये शायद पहले तो ये माना जाता रहा कि ऑस्ट्रेलिया में जो कॉन्ट्रैक्ट की लड़ाई चल रही थी कंपनियों के बीच में, उसका असर हो सकता है उसके मद्देनजर आया, लेकिन बाद में जब पाया गया कि करीब 4 महीने पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच हो चुका, उसके बाद इस तरीके का डेटा का लीक होना, ये इसके कुछ और मायने हो सकते हैं, और फिलहाल यही सारी चीजों का असेसमेंट चल रहा है। लेकिन फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि इसको लेके भारत ऑस्ट्रेलिया से कोई आग्रह करे कि आप या तो मीडिया से या कहीं से कोई कांटेक्ट करें। और जहां तक मीडिया हाउस को कांटेक्ट करने का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर द ऑस्ट्रेलियन को कांटेक्ट किया है, क्योंकि वो फिलहाल फ्रेंच गवर्नमेंट से, क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जहां है वहां से ही कांटेक्ट करना बेहतर होगा, और शायद इसी स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट को फिलहाल लिखा है।